ओम शांति। हमारे मध्य में आदरणीय करुणा भाई जी, बहुत भाई बहन इनसे परिचित भी होंगे। करुणा भाई जी जो बाबा के विशेष अनन्य रतन है, वरिष्ठ भाइयों में से हैं, जो भी आज हम टीवी चैनल्स के द्वारा प्रोग्राम देखते हैं सारा, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हम कल तक ध्वनि से इनका थैंक्स करेंगे। घर बैठे हुए हम मधुबन पहुंच जाते हैं, सब दादियों के समक्ष अपने को पाते हैं, सब बड़ी भाई बहनों की क्लास हमें घर बैठे ही मिलती है। बहुत बड़ा सहयोग इस विषय में करुणा भाई जी का है। 1971 में आप इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हुए, 45 वर्ष हो गए लगभग आपको इस ईश्वरीय विद्यालय से जुड़े हुए, अपनी सेवाएं देते हुए। देश विदेश में बहुत जगह शुरू में सेवा केंद्र स्थापित करने में आप मददगार रहे हैं। देश विदेश की जितनी भी यात्राएं सेवार्थ हुई है आपकी, उसमें अनेकानेक आत्माओं ने लाभ लिया है। मीडिया में आपका विशेष इंटरेस्ट भी है और मीडिया अपना जो विंग है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं भाई साहब, और कंप्यूटर कम्युनिकेशन, वीडियो ऑडियो डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिस, इसके द्वारा आप अपनी सेवाएं हम सबके आगे रखते रहते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि हम श्रीमत का कैसे सहज पालन करें। इस विषय में हमारे आगे भाई साहब अपने अनुभव युक्त विचार रखेंगे। लेकिन एक अनुरोध है, जो भी भाई बहन बिखरे बिखरे बैठे हैं थोड़ा सामने आके बैठ जाएंगे तो अच्छा है। ये भी एक बड़ों के प्योर वाइब्रेशंस हमारे तक पहुंचते हैं, जितना हम सामने बैठते हैं उतनी उनकी पावर हमारे अंदर आती है, इसीलिए सामने आएंगे तो बहुत अच्छा है। तभी हम आदरणीय भ्राता जी से सुनेंगे।
ओम शांति। आप सभी बाबा के महान आत्माएं जो ये जानते हैं कि हम स्वयं भगवान से मिलने आबू पर्वत पर आए हैं, क्योंकि मुझे वो दिन याद आता है जब पहली बार मैंने 3 दिन के कोर्स के बाद मालूम हुआ कि ये ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आबू पर्वत से सुना रहे हैं। मैंने उसी वक्त दादी जी को कहा कि मैं आबू पर्वत जाना चाहता हूं, तो उनको आश्चर्य हुआ, 3 दिन का ही बच्चा है, अभी कोर्स किया है तो कह रहा है आबू जा रहा हूं, जबकि उस समय पर भी यही नियम था कि 1 साल के बाद जा सकते हैं। परंतु बाबा ने कई बार मुरली में ये भी कहा है, ऐसे भी निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे जिनको ये मालूम हो कि स्वयं भगवान आ चुका है तो वो कभी ठहर नहीं सकता। तो मैंने आबू आने के बाद जब अनुभव किया जो स्वयं परमात्मा ब्रह्मा द्वारा श्रीमत दे रहे हैं जिसका नाम श्रीमत भगवद गीता के नाम से सारे विश्व में मशहूर है। भगवद गीता में भगवानों वाच भी है और स्वयं भगवान हम आत्माओं को सुना रहे हैं। एक यादगार के रूप में भक्ति मार्ग में सर्वशास्त्र शिरोमणि को करके सभी पढ़ते हैं। तो श्रीमत ही पूरा गीता है, परंतु 18 अध्याय है। जिन्होंने भी गीता पढ़े हैं तो भगवान ने एक दिन में कोई एक श्रीमत नहीं दिया है। श्रीमत को भी बाबा ने बिल्कुल हम उसका अभ्यास कर सके, पहले 14 साल दादियों को बाबा ने गीता सुनाई और उन सबको तैयार किया। इसके बाद आबू पर्वत आने के बाद भी मुझे याद है साकार बाबा हमको सुनाया करते थे, बच्चे आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं आपको उसका उत्तर नहीं आता है तो बताना कि शिव बाबा ने अभी तक सुनाया नहीं है। तो इससे हम समझ जाते थे कि बाबा जो श्रीमत देते हैं वो जितना जितना हम बच्चे समझ पाए और जितनी जितनी हम बच्चे फॉलो कर पाए उतना समय प्रति समय बाबा देते रहे। कल मैं किसी से डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने कहा ऐसा कोई टीचर है दुनिया में जो 75 साल तक लगातार शिक्षा दे रहे हैं एक ही लक्ष्य से कि मेरे बच्चे संपूर्ण और संपन्न हो जाए, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा। मां बाप भी कोई बच्चों को इतना लंबा पीरियड तक नहीं सिखाते हैं। तो स्वयं भगवान में कितनी पेशेंस है कि इस मानव सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने के लिए बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी शिक्षाओं का सार है श्रीमत। तो बाबा ने हम बच्चों को पहली श्रीमत क्या दी हम सभी जानते हैं, जो भी पहला दिन आते हैं। तो मुझे याद है जब मुझे उन्होंने आत्मा के बारे में समझाया तो मैंने कहा ये तो मैं समझ गया, तो आप मुझे अभी दूसरी लेसन दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जो पहला लेसन है मैं आत्मा हूं आपने केवल उसका अर्थ समझा है, मन बुद्धि संस्कार सहित चेतन आत्मा हूं शुद्ध आत्मा हूं ये, परंतु आप इसका अनुभव नहीं किया। आपको अभी तक मैं एक आत्मा हूं ये निश्चय नहीं हुआ। तो मैंने बहुत कहने की कोशिश किया, नहीं आपने समझा दिया मैं समझ गया, तो मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं आप पूछो। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं अभी। तो उन्होंने कहा आपको 24 घंटे तक जितनी बार आप अपने अंदर मैं आत्मा हूं ये जब तक नहीं करेंगे तो आपको दूसरी लेसन हम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई मैंने सारा दिन 24 घंटा ये अभ्यास किया तो ताकि आप दूसरी लेसन मुझे दे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमको मालूम पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, परंतु उन्होंने ये बताया देखो ये पहला लेसन है ये जितना आपका अच्छा अभ्यास होगा तो आपको दूसरे लेसन इजी होगी। ये पहला श्रीमत। सचमुच मैंने आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो यहां तक सारे दिन का अभ्यास करते हुए रात को भी मन में बिल्कुल वही संकल्प, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि हमारा लास्ट लेसन भी बाबा कहता है मैं आत्मा हूं। तो इतना अभ्यास किया, रात भर भी मन में वही गुनगुनाते रहे, सुबह कब होवे, मैं दादी जी के पास कब जाऊं और दूसरी लेसन कब लूं। और उन्होंने देखा बिल्कुल मेरे चेहरे पे और मेरे मन में जो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वो जो खुशी, वो देखते ही उन्होंने कहा कि हमको मालूम है आपने पूरा अभ्यास किया बिना बोले। तो इस प्रकार पहला श्रीमत हमने ये अभ्यास किया, तो उसके बाद दूसरी लेसन लेने में और योग का भी तीसरा लेसन अभ्यास करने में हमको सहज हुआ। तो श्रीमत भी बाबा ने स्टेप बाय स्टेप देते गए, जिसको हम 7 दिन का कोर्स कहते हैं, धारणा का कोर्स कहते हैं, ये सब हमारा स्टेप्स था। तो हम कहते हैं बाबा ने कभी हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ो ये नहीं सिखाया, उसके बदले हमको शांत प्रीत से, किस तरह से मधुर, सब गुणों के अभ्यास कराया, शीतलता, तो हर विकार जैसे हमसे दूर होने लगे। तो बाबा जैसे जैसे श्रीमत देते गए, आज भी व्यक्तिगत उनको कोर्स देते हैं, तो कोर्स वही है जो बाबा हम बच्चों को जो श्रीमत देते हैं। तो इसलिए हमारा श्रीमत के ऊपर फेथ पहला दिन से हुआ, जो बाबा कहते हैं वही करना है। एक दिन ऐसा हुआ, क्लास में मुरली सुन रहा हूं, तो बाबा ने कहा कि आपके शहर में कोई संत आया हुआ हो तो आपके पास जाओ, पीछे बैठ के सुनना, पूरी होने के बाद उनके पास कोई जाता हो और गुरु से शांति के लिए कहते हो तो आप सुनना, फिर उस आत्मा को आप भगवान का संदेश देना। तो सचमुच मैं आधा मुरली से उठा, जैसे ही बाबा ने कहा, मैंने कहा अब यार बाबा ने आज कहा है, मैं इसका आज ही प्रैक्टिस करूं। सचमुच शहर में उस दिन एक संत आए थे, मैं जाके पीछे से सुना, पूरा होने के बाद एक भाई गुरु के सामने जाके बोला मुझे बहुत अशांति है, शांति के लिए मैं क्या करूं। तो वो जो भी कहे, तो ये कहे ये सब मैं कर चुका हूं परंतु कुछ नहीं। तो आखिर गुरु को ये कहना पड़ा कि भाई नहीं, आप ऐसे ही करो जैसे मैं बोलता हूं। ऐसे गुस्से में उनको कर दिया, बेचारा वो उठ के बाहर आया। तो मैं वेट करता रहा उनका, और उनको मैंने बताया कि आपको शांति चाहिए तो शांति स्वयं परमात्मा से मिल सकता है, क्योंकि शांति का सागर परमात्मा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उनको हम कैसे प्राप्त करें। तो हमने कहा आज आप हमारे आश्रम में आइए तो आपको शांति मिल जाएगा। और सचमुच वो आश्रम पर आए और पूरा परिवार बाबा के बने। तो ये है श्रीमत का पहला अनुभव हुआ मुझे, अर्थात मुझे ये पूरा विश्वास है कि आज की जो मुरली होती है वो बाबा का आज के लिए श्रीमत है, क्योंकि कल फिर बाबा का दूसरी मुरली है। तो आज की मुरली आज हमारे लिए एक वरदान है। जैसे अभी आप सभी यहां आए हैं बाबा से सन्मुख सुनने के लिए, जो सन्मुख सुनना माना मेहनत नहीं आशीर्वाद, जैसे कहते हैं ना। तो भगत भगवान की तपस्या करने के बाद जब भगवान आते हैं तो भगवान से कहते हैं कि मैं क्या वर दूं, भगवान पूछते हैं, तो भक्त जो वर मांगता है तो भगवान उसको तथास्तु कहते हैं। तो इसी प्रकार हम सभी यहां इसीलिए आते हैं, हमको मालूम है स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा यहां आते हैं और बिन मांगे उसको सबका मन का पता है, आपको अनुभव है ऑलरेडी, सबका मन में क्या चल रहा है बाबा को पहले ही पता है। तो बाबा उस अनुसार हमको वरदान के रूप में देते हैं और वो एक वरदान के रूप में बिना मेहनत के प्राप्त हो जाता है। मुझे बाबा ने कहा, मुझे बाबा का ये वरदान इस बार मिला, तो ये हमारी रोज की श्रीमत है। समझो एक दिन की भी मुरली हमारी मिस हो जाता है तो समझो हमारा जो श्रीमत है आज का मिस हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी मुरली मिस नहीं करना। तो बाबा का श्रीमत क्या है, आज का श्रीमत आज की मुरली है। अब साकार मुरली चल रही थी, हम लोग रोज हमको मिलता था तो उस अनुसार हम लोग चलते थे। उसके बाद लगातार अव्यक्त बाबा की मुरली भी आने लगे, पर वो रोज नहीं आता था, परंतु जब बाबा अव्यक्त मुरली चलाते थे जब तक बाबा की दूसरी मुरली नहीं आती तब तक हम उस मुरली को पता नहीं कितनी बार पढ़ते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। और अव्यक्त मुरली का भी एक बहुत अच्छा अनुभव हम सबको है। आपने हर अव्यक्त मुरली में अनुभव किया होगा, बाबा होमवर्क देते थे। तो बाबा का श्रीमत था कि जो 15 दिन का जो बीच का समय मिलता है तो उसमें हम सभी बाबा के श्रीमत को प्रैक्टिकल में फॉलो करें। पहले जो साकार मुरली में हम लोगों को सिखाया जाता था कि श्रीमत हमको चार प्रकार से मिलता था। पहला श्रीमत ज्ञान, जो सत्य ज्ञान जो है, जो स्वयं परमात्मा आकर के बताते हैं, जो इस सृष्टि में कोई भी मनुष्यात्माएं नहीं दे सकते हैं, तो वो हर रोज साकार बाबा की मुरली में कोई न कोई नई बात ज्ञान की हम बच्चों को मिलता था। ये है ज्ञान का श्रीमत। इसी तरह से योग भी बाबा ने एक ही बार बता दिया कि भाई ऐसा योग कर लेना, ऐसा नहीं है। हर रोज बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से योग की विधि हम बच्चों को सिखाया, जो आज हम जो भी है तो बाबा के मेहनत का हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार आप सभी अनुभवी हो, कोई भी गुण की और शक्ति की धारणा करना कोई एक दिन का काम नहीं है। आपको मालूम है कि आज आप बोल दो मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, आज बाबा की मुरली में क्रोध के बारे में बहुत पावरफुल था, परंतु अनुभव क्या, उसी दिन ही कोई न कोई ऐसी आपकी परीक्षा हो जाती थी। तो इसी प्रकार जब भी हम ये बाबा के श्रीमत फॉलो करने की कोशिश करते हैं कोई भी शक्ति या कोई भी गुण के लिए, उस दिन परीक्षा भी हमारे सामने आती थी। तो बाबा धीरे धीरे हम लोगों को गुणवान या शक्तिवान बनाते आए हैं। बाकी बाबा का ये भी लक्ष्य था, संगम युग में सारे विश्व को बाबा का संदेश पहुंचना है, इसके लिए भी सेवा का भी समय प्रतिसमय ऐसी ऐसी भिन्न भिन्न युक्तियां रची, जहां एक एक आत्माएं आते थे और लास्ट में हम लोगों को मालूम है हमारी प्रोग्राम 1.5 लाख 2 लाख लोग भी आते थे। वहां तक बाबा ने सेवा की, धीरे धीरे श्रीमत द्वारा हम बच्चों को बढ़ाया। वैसे हम रोज मुरली में चार बातों के लिए ज्ञान योग धारणा सेवा अलग अलग लिखते थे, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। परंतु जब से अव्यक्त मुरलियां शुरू हुई उसमें सेवा से ज्यादा बाबा ने हम बच्चों को धारणा के ऊपर, मनुष्य से देवता बनना है तो देवताओं की क्या लक्षण है, इस पर ज्यादा श्रीमत और हम बच्चों का अभ्यास रहा। तो वैसे बाबा ने कहा था कितना साल का ये संगम युग है और हम बच्चों को कितना साधना करना है, ये श्रीमत बाबा टाइम टू टाइम देता रहा। कुछ समय से हम सब बच्चे ये अनुभव कर रहे हैं तो संगम युग अब कितना दिन। मुझे वो दिन याद आता है ब्रह्मा बाबा ने कहा था, बच्चे बस आपको ये एक जन्म शिव बाबा के हवाले देना है, बाकी पूरा कल्प बाबा आपके साथ मेहरबान है। 21 जन्म का तो बाबा सदा ही कहते हैं कि मैं 21 जन्म का वर्षा देता हूं आपका एक जन्म की त्याग से, परंतु मेरा अनुभव है कि जिन बच्चों ने इस संगम में, इस एक जन्म में आप बाबा के साथ रहे, तो मैंने देखा और आप भी अनुभव कर रहे हो बाबा के बच्चे इतना दुखी नहीं है जितनी दुनिया में है। ये सब मानते हैं, हाथ उठाओ जो मानते हैं। देखो बाबा थैंक यू, आपके बच्चे देखो कितने अच्छे हैं। तो हम कहते हैं बाबा हमको 21 जन्म का नहीं, हमको 84 जन्म में भी बाबा ने हमको सुख दिया है। तो इसीलिए बाबा के श्रीमत को हम बच्चे जितना सीरियसली उस बात को लेते हैं और फॉलो करते हैं, उतना बाबा हमको अधिक गुणवान बनाते हैं या संपत्तिवान बनाते हैं या राज्य का देवता संपन्न बना देते हैं। तो इसीलिए लास्ट मुरली में भी जो बात बताई है उसकी थोड़ी सी हम सोचते हैं, संगम का इस समय पर कौन सा समय चल रहा है। प्रश्न उठता है कि भाई संगम कितना समय है या इस समय पर बाबा का क्या श्रीमत है जो समय चल रहा है। तो समय के बारे में बाबा ने इसी मुरली में कहा, बच्चे जब जब आपको समय के बारे में सोचना है एक ही शब्द याद करना है, कौन सा? अचानक। तो अचानक का कोई समय है? कितना घंटा, कितना दिन, कितना नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा जो कुछ भी अभी श्रीमत अनुसार करना है तो अभी करना है। क्यों? क्योंकि अचानक का समय चल रहा है। इसके पहले बाबा ने लास्ट ईयर के मुरलियों में बाबा ने कह दिया था, अचानक बाबा ने ऐसे हाथ उठा के बोला कब तक, एक शब्द बाबा ने कह दिया था कब तक, और वो शब्द सुनकर के उसी टाइम थोड़ा सा घबराहट आ गई थी कि ये क्या कह रहे हैं बाबा कब तक। बाबा ने कहा था हम और बच्चे सब साथ चलेंगे और बाबा ये कह रहा है कब तक। ठीक है, तो समझ में आ गई तो कुछ बाबा का राज होगा। उसके बाद बाबा ने कहा लेट बोर्ड लग चुका है और लास्ट लास्ट में कहा टू लेट का भी बोर्ड लग चुका है। सीधा बाबा ने कह दिया, तो लेट का भी हो गया, टू लेट का भी हो गया, तो अब क्या बाकी रहा भाई। फिर बाबा की हर मुरली में लास्ट मुरली तक भी ये शब्द बाबा रिपीट करते रहे, अचानक अचानक अचानक। और वो वही बात है, शेर आया शेर आया शेर आया। तो लास्ट में जब शेर आया तो समझा ये तो रोज कहते हैं, तो शेर खा गया। तो वही बात है जो कल भी बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अचानक की जो मंत्र है वो याद रखना, इसीलिए जो करना है वो अभी ही करना है। तो जब करने की बात आई, समय की बात आई, तो बाबा ने एक बात एक विशेष सुनाया। अचानक तो सुनाया जो पहले भी सुनाया था, परंतु इस बार एक और समय के बारे में इशारा दिया। आप सब ने ध्यान दिया हो क्योंकि हम सबके सामने बताया बाबा ने, आपको गेट खोलना है। किस बात के लिए? मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट आपको खोलना है। माना ये हम कहते थे जब तक गेट खुला ही नहीं है कहां जाएंगे। तो आप ने सुना होगा एडवांस पार्टी बोलते हैं, भले यहां से गए हैं, हमारे दादियां गए हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं दादी जी, जानकी दादी को बहुत अच्छा लगता है, उन सबको फोटो देखती रहती है, सबको बांटती रहती है कि भाई पूर्वज है पूर्वज है। तो बाबा ने अभी तक उनको एडवांस पार्टी में ही रखा है, ये नहीं कि भाई वो गए नहीं। अर्थात जो दरवाजा खोलना है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, वो अभी जाके पहली बार अभी मुरली में बाबा ने समय का इशारा दिया कि अभी गेट खोलने का है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। जब तक बाबा गेट नहीं खोलेगा तो आत्माएं जो भी जाएंगे फिर वापस जन्म में आ रहे हैं, परंतु जब गेट खोल देंगे तो सभी आत्माएं हम साथ में बाबा के साथ जाएंगे। तो ये दो बात कहा, मुक्ति और जीवन मुक्ति। उसके साथ ये कौन है मुक्ति और जीवन मुक्ति वाले, उसके लिए बाबा ने कहा आपको संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाबा जैसे संपन्न और संपूर्ण बनना है। हमने साकार बाबा से भी पूछा था, बाबा सभी आत्माएं जब परमधाम जाना है और हम बच्चों के लिए बाबा इतना आप मेहनत करा रहे हैं, और जो ये दुनिया के आत्माएं भी लास्ट में परमधाम जाएंगे तो वो पवित्र हुए बिना ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, सभी आत्माओं को अपनी अपनी स्टेज, जिसको संपूर्ण स्थिति हर आत्मा के हिसाब से प्राप्त करना ही है, चाहे मार से चाहे प्यार से। तो इसलिए हम सब बच्चों को बाबा अभी तक भी प्यार से समझा रहे हैं कि क्या करो, ये श्रीमत देते जा रहे हैं बाबा, ताकि हम सभी संपूर्ण बने, संपूर्ण पवित्र बने, संपूर्ण होकर के हम जा सके। तो अर्थात जो बाबा को याद करके योग बल से तपस्या से बन जाते हैं तो उनकी एक स्टेज है, बाकी दंडाका के धर्मराजपुरी से होते वो जाते हैं तो वो भी मुक्ति में ही जाते हैं। तो फिर जीवन मुक्ति किसको मिलता है, तो वो फिर दूसरी सब्जेक्ट बाबा ने कहा संपन्न। तो संपन्नता जो है वो दैवी गुण की है। हमारे पास जो बाबा ने जो चार सब्जेक्ट दिया है, इन चारों सब्जेक्टों को संपूर्ण बन करके हम संपन्न बन करके जाते हैं, वही जाकर के सत्युग में आएंगे, देवता बनेंगे। तो इसीलिए मुक्ति संपूर्ण बन के मुक्ति तो जा रहे, संपूर्ण 5000 साल पूरा किया तो जाना ही जाना है, परंतु जो संपन्न है तो वही जाकर के फिर जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने ये भी समय का इशारा दिया, अभी अभी वो समय है जो आप मुक्ति या जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाले जो दोनों आत्माओं के लिए गेट खोलने का समय आ गया है। तो जैसे बाबा ने कहा था कि मच्छरों सदृश ऊपर उड़ेंगे करोड़ों आत्माएं, तो वो जब जाते हैं तो मच्छरों सदृश जाएंगे, बाबा ने कहा था वो समय जैसे अभी आ रहा है। तो इसीलिए हम बच्चों को श्रीमत इस समय पर यही मिल रहा है कि अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी पुरुषार्थ में थोड़ा भी कमी नहीं रहना है, अपने को अभी संपूर्ण स्टेज की अभ्यास करना ये समय है। अभी इसके बाद नहीं, अभी थोड़ी भी हमको ये मार्जिन मिला है। अब दादियों को देख रहे हैं, देखो दोनों दादियों का दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फरिश्ता बन चुके हैं। तो संपूर्ण फरिश्ता बनने का भी समय अभी आ चुका है, वही समय अभी चल रहा है जो हमको जैसे बाबा मम्मा दादियां अपनी लास्ट स्टेज, क्यों ब्राह्मण फरिश्ता इसके बाद संपूर्ण आत्मा बनते हुए देवता बन रहे हैं। तो यहां तक बाबा ने कहा था कि इस समय पर अपने आप को एक देवता स्वरूप का भी नजर आना चाहिए, परंतु बनना है फरिश्ता स्वरूप। तो सारे दिन में हम बच्चों को जितनी बार जितना समय इस शरीर से बिन, जैसे पहला दिन आए इतना बड़ा शरीर होते हुए भी हमको बताया गया एक छोटा सा बिंदु आत्मा है, तो हमने उसका अभ्यास की, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, छोटा सा आत्मा हूं, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, ये पक्का हो गया। पर अब हमको बता रहे हैं कि इस शरीर के साथ एक और भी स्वरूप है आपका, जो आप इस शरीर से निकलते ही एक ड्रेस आपका और है फरिश्ता स्वरूप का। अनेक विज्ञानियों ने कैमरा द्वारा, इसको विशेष कैमरा है वो, उस कैमरा द्वारा इन्होंने निकाला है कि हरेक का एक लाइट स्वरूप का भी एक आकार है। ये अभी सिद्ध हो चुका है विज्ञान द्वारा भी, अनेक डॉक्टर्स ने भी इस बात का वर्णन किए हैं, और अनेक आत्माओं ने इस शरीर से बाहर आकर के उनको जो ऑपरेशन करते हुए सारा देख रहे हैं, यहां तक जो डॉक्टर्स बातें कर रहे हैं वो भी उनको सुनने में आया है, फिर वापस शरीर में आकर के उन्होंने अपना अनुभव सुनाया है। तो अर्थात अब जो लास्ट जो एक स्टेज जो है हरेक का फरिश्ता स्वरूप है। हम कितनी प्यूरिटी को धारण किए हैं, कितनी दैवी गुणों को हम धारण किए हैं, वो हमारे से धीरे धीरे लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज भी कहते हैं, रशिया वाले बताते हैं कि आपकी एक अंगूठी से ही इससे वो बता सकते हैं कि आपकी कितनी प्यूरिटी है, एक फोटो निकाल के बता देंगे आपके अंदर कितनी प्रकाश है। तो इसीलिए अभी हम सबको सारे दिन में कुछ समय ये भी अभ्यास करना है, मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा तो हूं, पर आत्मा इस शरीर से अलग होकर के एक फरिश्ता स्वरूप का भी अभ्यास करने का एक समय आ चुका है। ये हर आत्मा का ये एक स्टेज है, भले दुनिया में इसको एंजल्स के रूप में भी कहते हैं, कभी कभी भूत प्रेत के रूप में भी लोग कहते हैं, हमने देखा, हमने शैडो के रूप में देखा, इस प्रकार सब बोलते हैं, परंतु बाबा के बच्चों का तो एक ही स्वरूप है, वो प्रकाशमय स्वरूप है। बाबा ने कहा मैं सबके लिए ऐसा ड्रेस तैयार कर रखा हूं, बस इस शरीर से निकल के उसमें आने का, और उसके साथ हम ऊपर बाबा मम्मा दादियां हम सबके लिए तैयार खड़े हैं, हम सब आए तो साथ में जाए, ये बाबा का एक हम सबको वायदा है। कई बार जो अभी आए हुए बाबा के बच्चे कहते हैं क्या हम बाबा मम्मा को तो देखा नहीं, कई तो ऐसे भी है जो दादी को भी नहीं देखा है, तो फिर हमारा क्या होगा। तो बाबा ने ये वायदा किया है कि मैं हर बच्चों से मिलकर के ही हम साथ में जाएंगे। तो बाबा अभी भी हमारे बाहें पसारे बाबा हमारे लिए खड़े हैं, तो हम सभी को अभी फरिश्ता का ड्रेस पहन के जाने का अभ्यास करना है। मुझे याद है साकार बाबा कभी कभी हमको शवासन के रूप में अभ्यास कराते थे, ऐसा सो जाओ, अपने को ऐसा फील करो कि ये शरीर से आप अलग हो गए हो, ये शरीर जैसे निकल गया है। तो ये अभ्यास बाबा की पहाड़ी में बाबा कराते थे। तो इसी प्रकार इस समय पर जो बाबा की श्रीमत है वो अपने को फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करने का समय है, क्योंकि किसी वक्त भी ये जो अचानक शब्द का कोई समय की सीमा नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को अभी से ही इसका अभ्यास करना जरूरी है। सरल शब्द में, क्योंकि हम जो करते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला श्रीमत है अमृत वेले का, ये पहला श्रीमत है जो हम ब्राह्मणों को यहां तक लाया है। आज ये संस्था इतना वृद्धि हुई है तो उसके शक्ति कहां से आई, ये अमृत वेला की शक्ति है। तो इसीलिए पहली श्रीमत है अमृत वेला। दूसरा श्रीमत है रोज की मुरली, आज की श्रीमत है आज की मुरली। तीसरा श्रीमत बाबा ने दिया ट्रैफिक कंट्रोल, जो अभी भी आप मधुबन में सुनते हैं। उसके बाद दादी जी ने ऐड कराया कि हर घंटे में भी बाबा को एक मिनट भी याद करेंगे तो आपकी वो स्थिति कंटिन्यू रहेगा। अब बाबा ने कंपलसरी लास्ट मुरलियों में कहा नुमा शाम, जो देवताएं भी इस आकाश में, फरिश्ते भी इस आकाश में घूमते हैं, वो समय है शाम का समय। तो इसलिए बाबा ने कहा है शाम का भी एक घंटा हम बच्चों को देना है। क्यों? क्योंकि बाबा को मालूम है कि मेरे बच्चे बिल्कुल संपूर्ण होके जाए। हमको चिंता नहीं है कि हम क्या स्टेज पाएंगे, क्या होगा, नहीं। आप श्रीमत पर चलते हैं, हम सभी श्रीमत अनुसार करते हैं, जवाबदारी बाप का है। तो इसीलिए इस समय पर लास्ट जो बाबा ने हमको श्रीमत दिया है वो शाम का एक घंटे का अभ्यास करना जरूरी है। लास्ट में बाबा ने ये भी कहा रात को सोने से पहले सब कुछ सारे दिन का बाबा को समर्पित करते हुए बाबा थैंक यू, दूसरा दिन देंगे तो दूसरे दिन भी प्रयास करेंगे। पर हम सोते समय पर भी ऐसे बाबा के गोद में सोते हैं कि बस हमारे लिए समझो बाबा अभी भी ले लेते हैं, हमको कोई चिंता नहीं है। बाबा कभी भी हमको अपने पास बुला ले हम तैयार हैं, ऐसे कहने वाले हाथ उठाए, वाह थैंक यू बाबा, देखो कितने हिम्मत वाले बच्चे आपके, कोई डरते नहीं है, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा हम सभी अभी बाबा की याद में 3 मिनट बैठते हैं और खुद जाके बाबा को बता देना बाबा हम रेडी हैं। ओम शांति। Thank you.